ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले 1869 पश्चिम जगत के एक बहुत बड़े लेखक रसेल कॉनवेल ने एक छोटी सी किताब लिखी थी कभी, एकर्स ऑफ डायमंड। उसमें उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी, जिस कहानी को उन्होंने अपने जीवन में लगभग 6,152 बार विश्व भर में अलग अलग जगह पर अपनी क्लासेस में कही। एक ही कहानी 6,152 बार। उसका शीर्षक था हीरो की खान, द एकर्स ऑफ डायमंड्स। उस कहानी में दिखाया है कि एक बहुत गरीब किसान है, अफ्रीका में रहता है, बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता है, और उसने ऐसी कहानियां सुन रखी थी कि अफ्रीका में ही कहीं एक ऐसी हीरो की खान है जहां पर प्रचुर मात्रा में हीरे मिलते हैं। कई लोगों से उसने ये सुन रखा था, कहानियां पढ़ रखी थी, और उसकी भी ये इच्छा थी कि वो भी उस हीरो की खान तक पहुंच जाए। और एक दिन उसने इतना दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे उस हीरो की खान तक पहुंचना ही है। वो अपने सारे खेत को बेच देता है और जितनी उसके पास चल अचल संपत्ति होती है सबको बेचकर निकल पड़ता है उस हीरो की खान की खोज में। सारी उम्र अफ्रीका के जंगलों में वो ढूंढता फिरता है। कई वर्षों तक पर उसे वो खान कहीं पर भी नहीं मिलती है। और एक दिन इतना उदास हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। जिस व्यक्ति को उसने अपना खेत बेचा था, कोई दूसरा किसान जो कि अब उस खेत का मालिक था, एक दिन वो दूसरा किसान जब खेती में काम कर रहा होता है तो खेत ही के पास से, खेत में ही एक छोटी सी नदी गुजरती है। वहां देखता है कि कुछ चमक रहा है नदी से नीचे, कुछ रंग बिरंगी प्रकाश वहां से आ रहा है। वो सोचता है पता नहीं क्या है, और वो 2-3 पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको वो ले लेता है, घर लेके आता है। उसको लगता है कि मेरी घड़ी जो है उसमें कहीं सजाने के लिए लगा दूंगा। और कुछ दिनों के बाद ये जो दूसरा किसान होता है उसका एक कोई और मित्र वहां आता है, और वो जो देखता है उस घड़ी में ये क्या लगा हुआ है चमकता हुआ, तो वो अपने मित्र से पूछता है, उस किसान से, क्या तुम्हें पता है ये क्या है? वो कहता है क्या है मुझे पता नहीं, ये तो नदी थी, वहां पर मुझे ये पत्थर मिले और मैंने ये यहां लगा दिए। तो वो दूसरा मित्र कहता है कि मुझे वहां ले चलो जहां तुम्हें ये पत्थर मिले। और वो किसान अपने मित्र को वहां ले जाता है जहां उसने वो पत्थर पाए थे, और वहां ढेर सारे वैसे ही पत्थर थे। वो मित्र कहता है जो तुमने पाया ये तो हीरे है, ये जो स्थान है कोई साधारण स्थान नहीं है, ये वही स्थान है जिसे पाने के लिए पहला किसान निकल पड़ा था। वास्तव में पहला किसान रहता ही वहां था जहां पर हीरो की खान थी और उसी की खोज में अपने ही खेत को छोड़कर वो निकल पड़ा और सारी अफ्रीका में घूमता रहा। यही खान आगे चल के किम्बरली डायमंड माइंस के नाम से प्रख्यात हुई। तो उस लेखक ने विश्व भर में यही बात सुनाई कि जिस हीरे की खान को तुम ढूंढ रहे हो वो कहां है? बाहर नहीं, जहां तुम उसे ढूंढ रहे हो बाहर, वहां वो नहीं है। यू आर सिटिंग ऑन द डायमंड माइंस, तुम ही उस हीरे की खान के ऊपर बैठे हो। सारा खजाना किधर है? बाहर नहीं परंतु अंदर, परंतु उसे ढूंढना पड़ेगा। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा जो ढूंढेगा उसे ही वो मिलेगा। यदि हम ढूंढे भी परंतु गलत स्थान पर ढूंढे, गलत जगह ढूंढे, गलत दिशा में ढूंढे तो वो नहीं मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, गहरे पानी में जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा स्वयं के ही अंदर, क्योंकि ये खजाना स्थूल खजाना नहीं है, सूक्ष्म खजाना है। किनारे पर बैठकर ये नहीं मिलेगा, अंदर जाना पड़ेगा। जैसे वो गोताखोर अंदर जाता है, जैसे वो डुबकी लगाता है, खाली हाथ लौट लौट कर आता है परंतु हारता नहीं, उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में भी भगवान ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दी है जो कि और इस संसार में किसी और को नहीं। आज सुबह की साकार मुरली, मैं जो तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं इसको जानकर तुम मास्टर जानी जानन हार बन जाते हो। ये जानने के बाद तुम्हारे लिए इस संसार में और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। जो इस ज्ञान को कंठ कर लेते हैं उन्हें क्या कहा बाबा ने आज? ज्ञान गंगा। जैसे ब्रह्मा ने इस ज्ञान को कंठ कर लिया है वैसे तुम भी इस ज्ञान को कंठ कर लेते हो, इसलिए तुम्हें कहा जाता है ज्ञान गंगाए। तो ये यात्रा है ढूंढने की, खोजने की। जो खोज है, जो सर्च है, ये जो क्वेस्ट है, ये ताउम्र चलने वाली सर्च जुस्तजू है। परंतु अब हमें अपनी दिशा बदलनी होगी। जो सोच रहे हैं बाहर है, शायद वो है ही नहीं। हमारी गति भी शायद उस किसान की तरह तो नहीं जो उसी हीरो की खान के ऊपर, खदान के ऊपर था परंतु सब कुछ बेचकर फिर चला गया, ढूंढता फिरा, भटकता फिरा सारी जीवन भर परंतु पा ना पाया, अन पाया ही रह गया। क्यों ब्राह्मण बने थे? किस लिए भगवान के पास आए थे? क्या भगवान के पास आने के बाद भी यदि जीवन में क्रांति नहीं आ रही है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या कहेंगे? अभी अभी बाबा ने कहा था तुम्हें कौन मिला है डियरेस्ट डैड? कौन मिला है डियरेस्ट डैड? ऐसे पिता को पाकर भी यदि हम खाली रह गए, ऐसे पिता को पाकर भी जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, पश्चाताप है, संताप है, गलतियां है, गफलत है, विकार है, विकल्प है, पाप है, संघर्ष है, तो क्या कहेंगे? क्या हम कहेंगे दुनिया वालों से कि हमने भगवान को पा लिया था उसके बाद भी हम दुखी ही थे? पल पल श्रीमत का उल्लंघन जीवन में हो रहा था। उसने हमें आकर कहा कि ये करो, परंतु हमने नहीं किया, क्या हम दुनिया वालों को ये कहेंगे? उसने कहा था कि संपूर्ण पवित्रता तुम्हें धारण करनी है, हम दुनिया वालों से क्या कहेंगे कि हमारा ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा था? उनके पास तो ज्ञान ही नहीं, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, फिर भी किस चीज की कमी रह गई थी? खोज करना है और मिलेगा उसे जो खोजेगा। जो खोजेगा ही नहीं, मैं बोरा, कबीर ने कहा है, मैं बेचारा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ, किनारे पर बैठे रहा डूबने के भय से, बेचारा कहा उसे, खोज करनी है। बाइबल में एक जगह लिखा है, सीक एंड यू शैल फाइंड, आस्क एंड इट शैल बी गिवन, नॉक एंड इट शैल ओपन, खटखटाओ तो दरवाजा खुलेगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। यदि घर बैठे रहे और हमने ढूंढा नहीं तो हमें मिलेगा भी नहीं, क्या खो दिया है जीवन में? ढूंढना पड़ेगा। तो आज की भट्टी विशेष इसी लक्ष्य के लिए है, क्या हमने खो दिया है? भगवान को पाने के बाद भी कौन सी वो चीजें हैं जो होनी चाहिए परंतु है नहीं, और क्यों नहीं है? क्या हम करें? कौन सी चीजें बाकी है करने की? कौन सा वो पुरुषार्थ करे? कौन सा वो सूक्ष्म पुरुषार्थ करे? अमृत वेला उठ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, परंतु क्यों ऐसा लगता है कि जीवन खाली खाली है? वो कौन सा मिसिंग डायमेंशन, वो कौन सा आयाम है जो नदारत है, और क्या करे उसे पाने के लिए? आज सारा दिन भर जितना हो सके उतना अपने समस्त विचारों को स्व केंद्रित कर देना है। बाजू में कौन बैठा है और यहां क्या हो रहा है, इन सब से उपराम होकर स्वयं को आत्म केंद्रित, केवल और केवल जैसे इस सभा में मैं अकेला ही बैठ रहा हूं, और यहां बैठकर केवल सुनना नहीं है, केवल शब्द कान पर पड़ रहे हैं ये ना हो, परंतु शब्द शब्द के बीच में जो मौन है, वाक्य वाक्य के बीच में जो मौन है, जो अंतराल है, उसमें स्वयं को देखना है, स्वयं के जीवन को देखना है। ये वो समय था जब हम भगवान के बने, और अब हम यहां हैं इस यात्रा में। कहीं वो सब तो नहीं कर रहे जो पहले भी करते थे, वही पाप, वही सूक्ष्म अपराध, वही गिल्ट कॉन्शियसनेस, वही आत्मग्लानि का भाव अब भी तो नहीं है? स्वयं स्वयं को देखना है, अपने जीवन को देखना है, अपनी जीवन के यात्रा को देखना है, बचपन से लेकर अब तक, भगवान के बनने से लेकर अब तक क्या खोया है और क्या पाया है? क्या जो खोया है उसे रोका जा सकता था? जो पवित्रता की पूंजी थी क्या उसे हम रोक सकते थे? जो खुशी थी क्यों खो दी? किसके वजह से, किन कारणों से? क्या फिर से जो खो गया था लॉन्ग लॉस्ट, क्या फिर से वो सिकिलदा बन सकता है? जिन खोजा तिन पाइया, जो ये सोच रहे हैं कि हम नहीं खोजेंगे शायद उन्हें मिलेगा भी नहीं, जो खोया है अब और आज से अभी से संकल्प करना है उसे फिर पाना है, जो खोई संपदा थी ऐसी आज हम आपको 5 बातें बताएंगे जो हमने खो दी और हमें पाना है, या फिर जिसे हमें ढूंढना है। सबसे पहली साइलेंस, मौन। सुबह से लेकर रात तक आवाज आवाज आवाज। आज सुबह की साकार मुरली, आत्मा थक गई है गाने से, बाजे से, गाजे गाजे बाजे और क्या तालियां सुन सुन कर आत्मा थक गई है। आवाज आत्मा को थकाता है। कौन थकाता है? आवाज। जिस जगत में हमें जाना है वहां आवाज नहीं है, वो मौन की नगरी है। सुबह से लेकर शाम तक आवाज आवाज आवाज, उठते से ही आवाज और रात तक आवाज। आत्मा की शक्ति का अपहरण किया है आवाज ने, आत्मा को रेस्ट की आवश्यकता है। साइलेंस ही वह रेस्ट है। आवाज के इस शोरगुल में मौन खो गया है। इस मौन की खोज, आंतरिक मौन, वह मौन जिसमें आत्मा उड़ने लगे, वह मौन जिसमें आत्मा स्वयं स्वयं को देखे, वह मौन, वह साइलेंस जहां पर प्रवेश कर आत्मा शक्तिशाली बनकर निकले। आवाज ने आत्माओं की, आत्मा की शक्ति का हरण किया है। उसकी प्यास, उसकी खोज मौन की है, और इन्हीं मौन के क्षणों में आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित होती है। इसलिए जो पहली चीज जिसकी खोज करनी है, जो कि हमारी थी और हमने खो दी या किसी ने छीन ली, वो कौन सी है? मौन, साइलेंस। अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर तो रात तक ऐसा कुछ समय निर्धारित करे कि जब हम मौन में रहे। परंतु मौन अर्थात चुप रहना केवल नहीं, मौन अर्थात आत्मचिंतन, मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात स्वयं को देखना स्वदर्शन, मौन अर्थात ज्ञान चिंतन। केवल मुख को चुप कर देना ये मौन की बहुत ही भीतरी परिभाषा है। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, 6 अगस्त 1910 यंग इंडिया न्यूज़पेपर में उन्होंने एक अनुभव लिखा है कि मैं जब अफ्रीका में था तब एक आश्रम में गया, टैपिस्ट मोनेस्ट्री नाम का वो मठ था। उस मठ में हजारों सन्यासी थे और उस मठ का एक नियम था, उस आश्रम का एक नियम था, जितने भी लोग सन्यासी वहां है, नव सन्यासी अभी अभी जिन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है, उन सबको केवल एक नियम का पालन करना पड़ता है और वो है मौन। तो महात्मा गांधी ने पूछा उस मठाध्यक्ष से कि आप क्यों करते हो, तो उस हेड ऑफ द मोनेस्ट्री ने कहा, वी हार्डली नो वॉट टू स्पीक एंड वॉट नॉट टू स्पीक, वेन टू स्पीक एंड वेन नॉट टू स्पीक, एंड वेन वी डू नॉट नो वॉट टू स्पीक, इज इट नॉट बेटर टू रिमेन काम एंड साइलेंट। हमें यही पता नहीं बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है, कितना ना अच्छा है कि हम मौन ही रहे। इसके लिए इस आश्रम का नियम है मौन। साइलेंस इज द स्लीप दैट रिफ्रेशेस विजडम। मौन वह नींद है जिसमें विवेक रिफ्रेश होकर बाहर निकलता है, वह विवेक जिसको बाबा दिव्य बुद्धि कहती है। तर्क क्या, सही क्या है, गलत क्या है, सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ये कब जानेगी आत्मा? आवाज में, शोरगुल में, इस कमोशन में, कभी नहीं। आत्मा को मौन की आवश्यकता है। मौन आत्मा का भोजन है और आत्मा को हमने भूखा रखा है सदियों से, उसकी भूख मिटाओ उसी मौन की गुफा में। वो अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करेगी। अमृत वेले के बाद का समय कम से कम 8 बजे तक संपूर्ण मौन। दिन भर के कार्य व्यवहारों के बाद फिर शाम को मौन, और सारे दिन भर में काम करते करते भी मौन। आप स्वयं को देखना कि 2 दिन, एक दिन हमने बहुत बातें करते करते सेवा की और एक दिन हमने मौन रहकर सेवा की, केवल मौन रहे, योग नहीं किया, केवल मौन। क्षमता, निर्णय शक्ति उस दिन अधिक रहेगी जिस दिन हम मौन थे। कितना सुंदर वाक्य है आज की मुरली में, तालियां, गाजे, बाजे, इन तीनों ने आत्मा को थकाया है। पहली चीज जो खो गई थी वो है साइलेंस, दूसरा 5S हम आपको बताएंगे। पहला S साइलेंस अर्थात मौन, दूसरा S सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड अर्थात एकांत। भगवान ने एकांत की बहुत गहरी और बहुत बड़ी परिभाषा दी है, एक के अंत में खो जाना। हम उस एकांत की बात नहीं कर रहे, हम स्थूल एकांत की बात कर रहे हैं। कितना समय ऐसा है जिसमें हम अकेले में हैं, आस पास कोई नहीं, स्वयं से बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक, भगवान से बात कर रहे हैं, टॉक विद गॉड। और तीसरा ज्ञान चिंतन। हर एक ब्राह्मण को ये 3 चीजें रोज करनी है, स्वयं से बातें, बाबा से बातें, और तीसरा ज्ञान का चिंतन। सबसे आवश्यक चीजें हैं ये 3, हर दिन की दिनचर्या में ये 3 चीजें होनी चाहिए, जिसमें हम स्वयं से बात करें। तुलसीदास ने सारा रामचरितमानस लिखा, कई बार लिखा है, अरे मूर्ख मन सुन, संसार के लिए नहीं लिखा, संसार को दिखाने के लिए नहीं लिखा, स्वयं के लिए लिखा। अरे मूर्ख मन, राम की तरफ जा, ये काम नहीं सब कुछ बिगाड़ा है। मम हृदय कंज निवास कर कामादि खल दल भंजनम। हे राम, मेरे हृदय में निवास कर, और ये जो काम विकार है, ऐसे जो खल है, शत्रु है, उनका नाश कर। किससे कह रहा है वो? स्वयं से, स्वयं के मन से कह रहा है, स्वयं से बात, स्वयं ही के अंदर जाना। जो खोया है वो यहां है, बाहर नहीं। अपने लिए एकांत के पलों को खोजना है। कहां जाए, टेरेस पर, बगीचे में, कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई जगह जहां एकांत हो, ऐसे स्थान को, स्थूल एकांत से सूक्ष्म एकांत की यात्रा है। तीसरा, सेवा। जिसको हम सेवा कह रहे हैं, शायद वो सेवा ना हो। सेवा की जो परिभाषा भगवान ने दी है, बहुत गहरी है। किसी को कोर्स करा देना, ज्ञान सुना देना, कोई प्रदर्शनी, कोई कोर्स, या कहीं घुमा देना, सेवा केवल उतनी नहीं है। सेवा बहुत बहुत गहरी है। सेवा के कई तल है, और वर्तमान समय भगवान को स्थूल सेवाधारियों से ज्यादा किन सेवाधारियों की आवश्यकता है? सूक्ष्म। सबसे बड़ी सेवा सूक्ष्म है। सबसे बड़ी सेवा अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने की सेवा है। आज सुबह का वरदान, एक एक संकल्प तुम्हारा नए ते नया, ऊंचते ऊंच, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। जैसे आदि में साक्षात्कार हुए थे स्वप्न से दिव्य दृष्टि का, वैसा फिर होगा। इसलिए अपने संकल्पों को ऊंचा बनाओ। इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है सूक्ष्म सेवा, वाइब्रेशंस की सेवा। एक ही स्थान पर बैठकर विश्व की आत्माओं की सेवा करना, एक ही स्थान पर बैठकर दूर दूर तक शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन बनाना, एक ही स्थान पर बैठकर वायुमंडल को शक्तिशाली बना देना, एक ही स्थान पर बैठकर अपने संकल्पों से स्थान को निर्विघ्न कर देना, ये सर्वोच्च सेवा है। स्थूल सेवाएं बहुत कर ली, अब ये सेवा करो। महाभारत में दिखाया है, जब श्री कृष्ण कंस वध के बाद सांदीपानी आश्रम में होते हैं, परशुराम वहां आते हैं और वो कहते हैं कि गोविंद, तुमने ही मुझे बुलाया है, और तुम यहां क्या कर रहे हो? लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया। लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, रास बहुत कर ली, अब वो करो जो करने आए थे। स्थूल सेवाएं बहुत की और वो चालू रहेगी, परंतु अब वो करो जो करने आए थे, सकल जगत का कल्याण। अपने संकल्पों से, अपनी स्थिति से, शक्तिशाली वाइब्रेशन से, ये सेवा शायद खो गई है। ये सेवा शायद जितनी होनी चाहिए नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं, भक्तों की आवाज सुनो, रहम करो। दुखी है, त्राही त्राही मची है संसार में, क्या उनकी आवाज सुनाई नहीं देती? परंतु हां, यदि कोई अपने ही दुख में डूबा है तो कहां से सुनेगा दूसरे के दुखों की आवाज? क्या हम भी अपने ही दुखों में तो नहीं डूबे हुए? और इस सेवा के लिए शक्तिशाली मन की आवश्यकता है। कमजोर मन ये सेवा नहीं कर सकेगा। पावरफुल माइंड फॉर पावरफुल सर्विस। मन को सूक्ष्म अति सूक्ष्म विकारों से मुक्त करना, मन को सूक्ष्म अति सूक्ष्म कलियुगी संस्कारों से मुक्त करना, ये यात्रा संपूर्ण अपनी है, निजी है। कोई दूसरा कब तक बताएगा तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है? शायद कभी बताए ही ना, हमें अपने आप को ही देखना पड़ेगा। मुरली रूपी आईना मिला है, इस ज्ञान के आईने में देखो। और यदि कोई हमें बताने भी आए हमारी गलती, तो शायद हमें वो शत्रु जैसा दिखे। दादी जान की हंसी में कहती है, यदि तुम्हें शत्रु निर्माण करने हो तो दूसरों को करेक्शन देना चालू करो। यदि शत्रु निर्माण करने हैं तो क्या करो, दूसरों को करेक्शन देते रहो, तो वो दुश्मन बन जाएगा। इसके लिए वो कार्य हमारा नहीं। और यदि हमें कोई करेक्शन दे तो नम्रता से उसे स्वीकार करना, इसके लिए भी महानता की आवश्यकता है। तो तीसरा एस है सेवा। इस सूक्ष्म सेवा को खोजना है। सुबह और शाम दो बार मनसा सेवा करनी है। किस किस की करेंगे? पांचों तत्वों की, इस संसार की दुखी आत्माओं की, अशांत आत्माओं की, और तीसरा इस यज्ञ की। इस यज्ञ की, बाबा के महावाक्य है, एक दिन ये यज्ञ भी हिलेगा। अंदर वाले बाहर जाएंगे, बाहर वाले अंदर आएंगे। एकलव्य अर्जुन के आगे जाएंगे, भविष्यवाणियां है बाबा की। जो कच्चे हैं यहां पे ठहरेंगे नहीं, जो पक्के हैं केवल वहीं यहां ठहर सकेंगे। जो यहां जबरदस्ती से आए हैं, दुखी होकर आए हैं, मजबूरी से चल रहे हैं, वो सब यहां से बाहर हो जाएंगे। और जो अनन्य है, जो योगी है, जो तपस्वी है, जिनमें वैराग भरा है, केवल वही यहां रहेंगे। बाकी संसार के आकर्षण में आकर खिंचकर कहीं और चले जाएंगे। क्या मैंने स्वयं को, अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया है? स्वयं की चेकिंग, स्वयं को देखना, ये तीसरा एस। चौथा सेकंड, सेकंड अर्थात टाइम। टाइम को चुराना है, टाइम की खोज करनी है। सुबह से लेकर रात तक कितना समय व्यर्थ जा रहा है? समय सफल तब कहा जाएगा जब वो समय एक तो याद में है, या आत्माभिमानी स्थिति में है, या सेवा में है, परंतु वो सेवा भी ज्ञान योग धारणा, उसमें ये तीन चीजें होनी चाहिए। वो सेवा, अभी अभी संडे को मुरली चली थी, वो सेवा जिसमें खुद भी डिस्टर्ब है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या करो? क्या करो ऐसी सेवा का? बहुत कड़े महावाक्य थे बाबा के। जिसमें संतुष्टता नहीं है उसको क्या करो, छोड़ दो, बाबा ने कहा। सेवा अर्थात वह सेवा जिसमें गहरा संतोष हो अंदर, वह सेवा जिससे अहंकार जन्म ले रहा है, वह सेवा जिसमें कंपटीशन है, वह सेवा जिसमें मतभेद है, असंतुष्टता है, डिस्टर्बेंस है, पश्चाताप है, ईर्ष्या है, दूसरों को गिराने का भाव है, वो सेवा है ही नहीं। इसके लिए चौथी कौन सी चीज ढूंढनी है हमें, सेकंड अर्थात टाइम। सुबह से लेकर रात तक कितना समय व्यर्थ जा रहा है, सेकंड सेकंड महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंड को चुराना है। इसके लिए ज्ञान का चिंतन बहुत आवश्यक है। सुबह मुरली सुन ली, अब सारे दिन भर अलग अलग पॉइंट्स पर चिंतन करते रहो, खाना बनाते समय, ट्रैवलिंग करते समय, घर में जब बैठे हैं तब, सेवा करते समय अंदर ही अंदर चिंतन होता रहे, ताकि स्थिति ऊपर रही। नहीं तो नीचे आते ही बाबा ने एक अव्यक्त वाणी 87 में कहा है, सेवा में ही वैराग भी नष्ट हो जाता है। चाहे कितना भी भाग दौड़ करो, अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, चाहे कितना भी भाग दौड़ करो, यदि तुम्हारी सेवा में निमित्त भाव, निर्मल वाणी और निर्माण भाव नहीं है तो केवल 5% जमा होगा। कोई अगर कहे कि हम तो सुबह से लेकर सेवा में लगे हुए हैं शाम तक, इतना बड़ा मेगा प्रोग्राम किया, इतने हजारों आत्माएं आ गए, उनका कोर्स हुआ, सब हुआ, भगवान के महावाक्य, यदि ये तीन चीजें उस सेवा में नहीं थी, निमित्त भाव नहीं था, अहंकार था कि हम कर रहे हैं, निर्मल वाणी नहीं थी, आपके नीचे जो सेवाधारी है उनके ऊपर उनको डांट रहे थे, कुछ और कर रहे थे, और निर्माण भाव नहीं था, मान रहित कामना नहीं थी, मान की कामना नहीं थी उसमें, नहीं तो वो सारी सेवाएं जिसमें मान की कामना है, मेरा नाम हो जाए, कितना जमा होगा, केवल 5%। ऐसा जीवन का कोई पहलू नहीं है जिसके विषय में बाबा ने कहा नहीं है, हर चीज के बारे में कह के रखा है, खाली हमने पढ़ा नहीं है, हमने एडमिशन लेट ली है। तो समय को चुराना है, कहीं भी हमारा टाइम किसी भी बात में वेस्ट न हो। ज्ञान की बुलबुल क्या करती रहे, ज्ञान की बुलबुल कौन बताएगा क्या करती रहे, टिकलू टिकलू करती रहे, किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो आ जाए और हमारा समय छीन कर ले जाए। हमारे समय के हम मालिक हैं, और यदि हमने खोया तो जिन खोजा तिन पाइया, हमें ही फिर से खोज करनी पड़ेगी अपने ही उस समय की। और पांचवा एस, स्पेस। स्पेस अर्थात स्थान, स्पेस अर्थात इंटरनल स्पेस, आंतरिक स्थान। हमने अपना एक इंटरनल स्पेस जो थी हमारी, जिसमें केवल और केवल हम थे, उसमें इतने लोग आकर बैठ गए कि हम खो गए। हमारी एक दादी थे, वो कहते थे कि अपने हृदय में सोफा नहीं रखना, नहीं तो 4-5 लोग आके बैठेंगे, हमेशा एक सिंगल चेयर रखो जिसमें खाली बाबा बैठे। सोफा रख दोगे तो 3-4 लोग आके बैठेंगे दिल में, क्या रखना है, एक चेयर जिसमें खाली बाबा आकर बैठ जाए। जैसे एकांत बताया, वैसे ही इंग्लिश में एक शब्द है एवरीवन नीड्स एन इंटरनल स्पेस, हरेक को जगह चाहिए अनक्राउडेड, जहां पर लोग ना हो। जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, एक है एकांत स्थूल, स्पेस अर्थात आंतरिक, अर्थात वह अवस्था जिसमें इर्द गिर्द और कोई नहीं है, सबको हमने बाहर किया। बाइबल में एक वाक्य है एक जगह, इफ ई लवेथ योर मदर एंड फादर मोर देन मी, ई आर नॉट वर्दी ऑफ मी। इफ ई लवेथ योर ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी, ई आर नॉट वर्दी ऑफ मी। यदि तुम अपने लौकिक मां बाप से मुझसे अधिक प्रेम करते हो तो तुम मेरे लायक ही नहीं हो। यदि तुम अपने लौकिक भाई और बहन से मेरे से अधिक प्रेम करते हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो। आई गॉड थाय लॉर्ड एम अ जेलस गॉड, मैं जो कि तुम्हारा परमात्मा हूं, ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त और किसी से प्यार मत करना, ऐसा बाइबल में लिखा है। आई थाय लॉर्ड थाय गॉड एम अ जेलस गॉड। 70s में एक अव्यक्त वाणी चली है जिसमें बाबा ने कहा है, मियां बीबी राजी पर एक मुरली चली है, बाप को बहुत दुख होता है जब बाप देखते हैं कि बच्चे किसी और का हाथ पकड़ कर जा रहे हैं। मैं हूं मियां और तुम हो बीवी, जब बीवी किसी और का हाथ पकड़ के जा रही है तो मियां को बहुत दुख होता है, ऐसा बाबा के महावाक्य है। सुनिए मुरली, स्पेस, ऐसी स्पेस जिसमें लोग ना हो, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई नानी नहीं, कोई नाना नहीं, कोई दादा नहीं, कोई दादी नहीं, कोई पोता नहीं, कोई पोती नहीं, केवल मैं आत्मा, वह स्पेस, ऐसी कंप्लीट डिटैचमेंट की अवस्था, अर्थात वह इंटरनल स्पेस। जब तक वहां आत्मा प्रवेश नहीं करती, इन सभी के प्रभाव से मुक्त नहीं होती, वो शक्तिशाली नहीं बन सकती। इसके लिए शक्तिशाली स्थिति का गायन है, नष्टो मोहा, तोड़ सबसे निभाना है, सबके बीच में ही रहना है, सबकी सेवा भी करनी है, परंतु जैसे किसी की नहीं। जैसे एक नर्स होती है हॉस्पिटल में, एक बच्चों के अस्पताल में, एक बच्चों का वार्ड है जिसमें 50 बच्चे हैं, सब बीमार है, सबकी सेवा करने नर्स आती है, सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा करती है, परंतु उसका अपना बच्चा घर में है। यहां सेवा ऐसा भी नहीं कि वो सेवा नहीं कर रही है, सेवा कर रही है, सबका ध्यान रख रही है, परंतु सारा ध्यान किधर है, अपने बच्चे के ऊपर। संसार में रहो परंतु सारा ध्यान ऊपर। भक्ति में बहुत अच्छी कहावत है, भक्ति में कहा जाता है, परमात्मा प्रेम दांत के दर्द के जैसा है। टूथेक, दांत जब दुखता है ना, अगर पेन किलर ना ली जाए तो सारा ध्यान उसी दांत के दर्द की तरफ रहता है, खाओ उठो बैठो चलो सो, पर सारा ध्यान किधर रहता है, दांत की तरफ, वो दुखते रहता है, थ्रॉबिंग पेन होते ही रहता है, होते ही रहता है। वैसा ही इस संसार में सब कुछ करते हुए याद उस एक की रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो किनारे पर बैठकर नहीं होगा, कहां जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा गहरे पानी में, उस परमात्मा सागर में। और ये 5 चीजें आपको बताई जो फिर से खोजनी है, 5S। पहला साइलेंस, दूसरा S सॉलिट्यूड अर्थात एकांत, तीसरा S सेवा, सूक्ष्म सेवा, ऊपर ऊपर वाली नहीं, दिखावे वाली नहीं, फटाफट कर लिया और काम पूरा हुआ वाली नहीं। अभी अभी मुरली चली थी, पूज्य बनने का आधार चार प्रकार की आत्माएं, एक डर वाली, एक दिखावे वाली, सुनी ना मुरली, मजबूरी से करने वाली, फर्ज समझकर करने वाली, चार प्रकार के भक्त उधर है, यहां पर भी चार प्रकार की आत्माएं हैं। परंतु नंबर वन पूज्य आत्मा अर्थात उसमें फिर चार चीजें, चारों ही सब्जेक्ट में वन, उसमें संपूर्ण पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। नंबर वन पूज्य आत्मा की निशानी। तो तीसरा एस है, एस फॉर सेवा। कौन सी सेवा? सूक्ष्म सेवा, मन की सेवा, संकल्पों की सेवा, वाइब्रेशंस की सेवा, स्थिति की सेवा। चौथा एस सेकेंड अर्थात टाइम। सेकेंड का अर्थ है समय, समय को वेस्ट नहीं होना है, उसको खोजना है। लास्ट एस स्पेस अर्थात वह नष्टो मोहा स्पेस। तो ये पांच एस, ठीक है। अभी हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिनको खड़ा होना है खड़ा हो जाए और फिर बैठ जाएंगे। या कोई एक्सरसाइज करा सकता है? है कोई? चलो कोई नहीं, तो करा सकते हैं कोई, सामने आके कराए सबको, अगर कोई करा सकता है तो ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट के बाद दूसरी क्लास फिर चालू करेंगे। ओम शांति।